प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधांशु कुमार पांडे। आज हम इनोवेटिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के अंतर्गत माइक्रो टीचिंग पर विचार विमर्श करेंगे। माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण हेतु एक तकनीक है, जिसका प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण में मास्टरी और टीचिंग स्किल्स, शिक्षक कौशलों पर मास्टरी, पूर्ण आधिपत्य प्राप्त करने के लिए बहुतायत में किया जाता है। माइक्रो टीचिंग टर्म सर्वप्रथम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 में एलन और अनविन के द्वारा किए गए रिसर्चेस शोधों के परिणाम स्वरूप प्रकाश में आया। एलन इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं, माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन ए क्लास साइज एंड क्लास टाइम। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज रेंज फ्रॉम 5 to 10 एंड द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड रेंजेस फ्रॉम 5 to 20 minutes। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण को छोटा करके, उसकी अवधि को छोटा करके, कक्षा के आकार को छोटा करके शिक्षण कौशलों को सीखने की एक तकनीक है, जिसके माध्यम से पर्सपेक्टिव टीचर्स, जो प्रशिक्षु शिक्षक होते हैं, वे शिक्षण कौशलों पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं, उसको अपने व्यवहार में लाते हैं। माइक्रो टीचिंग के पीछे पूर्व धारणाएं क्या हैं, क्या एज्यूम्सन्स हैं जिनके आधार पर माइक्रो टीचिंग को आगे प्रक्रिया में, शिक्षक प्रशिक्षण की प्रक्रिया में लाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है बहुतायत में। पहला तो ये है कि चूंकि शिक्षण एक जटिल कार्य है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स टास्क, अतः इसको हम विश्लेषित करके छोटे छोटे सरल कौशलों के अंतर्गत विभक्त कर सकते हैं और इन कौशलों पर आधिपत्य प्राप्त करके, इन कौशलों पर मास्टरी प्राप्त करके शिक्षण जैसे जटिल कार्य को सरलतापूर्वक सीखा जा सकता है। दूसरी एजुम्सन जिस पर सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, माइक्रो टीचिंग आधारित है, वह यह कि शिक्षण कौशलों को अभ्यास के द्वारा, शिक्षण कौशलों के अभ्यास के द्वारा उन पर मास्टरी हासिल की जा सकती है, उन पर आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है और यह आधिपत्य, यह प्रैक्टिस, आधिपत्य प्राप्त करने के लिए किया गया अभ्यास कुछ स्पेसिफाइड विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों के अंतर्गत किया जा सकता है। यदि यह विशिष्ट परिस्थितियां उपस्थित होंगी तो यह अभ्यास सफल एवं फलीभूत होगा। अगला, यदि उपयुक्त पृष्ठपोषण, प्रॉपर फीडबैक और उसको सिस्टमेटिकली दिया जाए, ठीक तरीके से दिया जाए, औचित्यपूर्ण रूप से दिया जाए, तो स्किल्स की मास्टरी में वो बहुत बेनिफिशियल सिद्ध होता है, लाभदायक सिद्ध होता है। अगला, जब समस्त उपयुक्त कौशलों पर आधिपत्य स्थापित हो जाए, उन पर मास्टरी हो जाए किसी पर्सपेक्टिव टीचर की, तो इन कौशलों को इंटीग्रेट किया जा सकता है, इनको समाकलित किया जा सकता है। एक और एज्यूम्सन है कि सीखे गए स्किल्स या शिक्षण कौशलों को आसानी से अभ्यास के द्वारा वास्तविक कक्षा कक्षीय परिस्थितियों में स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, प्रयुक्त किया जा सकता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स क्या हैं, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के चरण क्या हैं, किन चरणों से होकर के सूक्ष्म शिक्षण गुजरता है। सर्वप्रथम माइक्रो टीचिंग की प्रक्रिया में, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में स्टेप आता है, चरण आता है प्लानिंग, नियोजन का। इस चरण पर, इस स्टेप पर क्या किया जा सकता है? इस स्टेप पर उस शीर्षक का चयन किया जा सकता है जिस पर शिक्षण करना है, जिस शीर्षक के द्वारा किसी शिक्षण कौशल का पर मास्टरी हासिल की जाएगी, आधिपत्य हासिल किया जाएगा। उसके लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन किया जाता है, नियोजन किया जाता है। उस स्किल का चयन किया जाता है जिस पर मास्टरी हासिल करनी है। टॉपिक जो शीर्षक चयनित किया गया है, यदि वह पर्याप्त है तो उससे रिलेटेड जितने भी स्किल्स हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। जो एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ उन समस्त गतिविधियों को एक लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित किया जाता है, एक तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिस तार्किक अनुक्रम पर चलकर टीचिंग स्किल्स पर मास्टरी प्राप्त की जाएगी। और यह प्लानिंग फेज किसी एक्सपर्ट की सहायता से किया जाता है। आपको याद होगा जब हम लोग माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिसेस कर रहे थे तो हम आपस में मिलकर के किसी टॉपिक और उससे रिलेटेड टीचिंग स्किल्स, उसमें की जाने वाली एक्टिविटीज़ आदि पर नियोजन के समय विचार विमर्श करते थे। दूसरा चरण जो है, महत्वपूर्ण चरण है, वह है टीच, शिक्षण, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लानिंग। यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर जो ट्रेनी टीचर है, जो प्रशिक्षु शिक्षक है, जो पर्सपेक्टिव टीचर है, वे माइक्रो टीचिंग के जो पार्टिकुलर स्किल्स हैं उन स्किल्स से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, उनका अभ्यास करते हैं रियल क्लासरूम सिचुएशन में। जो बताया गया था छोटी कक्षा में 5 से 10 विद्यार्थियों की कक्षा में, और 5 से 10 मिनट की अवधि का लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान बना करके उस टीचिंग स्किल के विभिन्न घटकों, विभिन्न कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर जब उन कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस की जाती है तो वे अपने आत्मविश्वास एवं अपने साहस को प्रदर्शित करते हैं, और एक छोटी कक्षा को जब वो संबोधित करते हैं, जब उसमें शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षण कौशल का अभ्यास करते हैं, कंपोनेंट्स को वो एग्जीक्यूट करते हैं, तो इस प्रकार से उनमें एक आत्मविश्वास और साहस भी पैदा होता है। इस टीच फेज में ही यदि संभव हो तो प्रशिक्षु शिक्षक द्वारा अभ्यास किए गए शिक्षण कौशल और उसके एग्जीक्यूट किए गए उसके कंपोनेंट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। तीसरा फेज जो आता है वह है फीडबैक का फेज आता है, तीसरा स्टेप है फीडबैक, पृष्ठ पोषण का। इस स्टेप पर, इस चरण पर रिकॉर्डेड वीडियो टेप के माध्यम से प्रशिक्षु शिक्षक द्वारा अभ्यास किए गए शिक्षण कौशल के कंपोनेंट्स के एग्जीक्यूशन में जो भी कमियां रह गई हैं, जहां सुधार की आवश्यकता है, एक्सपर्ट्स और उसके जो उसका जो पीयर ग्रुप है, ट्रेनी टीचर का पीयर ग्रुप है, जो भी उसका समूह है जिसके साथ वह अभ्यास कर रहा था, वे आपस में मिलकर विचार विमर्श करते हैं कि कहां पर कमी रह गई है और उस कमी में कैसे सुधार किया जाना चाहिए। तदुपरांत नेक्स्ट स्टेप आता है रीप्लान, पुनर्नियोजन। पुनर्नियोजन में जो प्रश्न पोषण, जो फीडबैक हमको प्राप्त होता है, उसके आधार पर हम अपने स्किल्स को, कंपोनेंट्स एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को, अपने टॉपिक को, अपने आप के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को पुनर्नियोजित करते हैं और हम टीचिंग स्किल्स पर मास्टरी आधिपत्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पुनर्नियोजित इस पुनर्नियोजन को पुनर्शिक्षण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और पुनः विशेषज्ञ शिक्षक, ट्रेनर, सुपरवाइजर और पीयर ग्रुप पर्सपेक्टिव टीचर को, ट्रेनी टीचर को अपने सुझाव पृष्ठपोषण के रूप में देते हैं। और इस प्रकार से ये माइक्रो टीचिंग साइकिल चलता रहता है, जिसमें सर्वप्रथम स्टेप होता है नियोजन यानी कि प्लानिंग, दूसरा स्टेप होता है टीच यानी एग्जीक्यूशन, तीसरा स्टेप होता है फीडबैक यानी कि पृष्ठपोषण, चौथा स्टेप होता है रिप्लान पुनर्नियोजन, पांचवा स्टेप होता है रीटीच पुनर्शिक्षण और छठा स्टेप होता है रीफीडबैक पुनर्पृष्ठपोषण और पुनर्पृष्ठपोषण के उपरांत पुनः प्लानिंग। और इस प्रकार से माइक्रो टीचिंग स्किल का साइकिल चलता रहता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कोई ट्रेनी टीचर किसी पार्टिकुलर टीचिंग स्किल पर मास्टरी प्राप्त नहीं कर लेता है, किसी पर्टिकुलर शिक्षण कौशल पर, किसी निश्चित शिक्षण कौशल पर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त नहीं कर लेता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो टीचिंग जो सूक्ष्म शिक्षण है उसकी फेजेस क्या हैं, अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। तो विद्वानों ने माइक्रो टीचिंग की तीन फेजेस बताई हैं। प्रथम, नॉलेज एक्विजिशन फेज यानी कि ज्ञान प्राप्ति अवस्था। इस अवस्था में जो ट्रेनी टीचर होता है, जो पर्सपेक्टिव टीचर है, जो प्रशिक्षु शिक्षक है, वह स्किल्स के विषय में जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसको प्राप्त करता है। क्या क्या हो सकता है नॉलेज एक्विजिशन फेज में, ज्ञान प्राप्ति अवस्था में? ट्रेनी टीचर शिक्षण कौशल और शिक्षण कौशलों के जो घटक हैं उन पर सैद्धांतिक रूप से अपना आधिपत्य प्राप्त करता है, अर्थात उनका ज्ञान प्राप्त करता है। और इस ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत वह पीयर ग्रुप में उनका डिस्कशन करता है, विमर्श करता है, अपने एक्सपर्ट, सुपरवाइजर, मेंटर, टीचर से उसका इलुस्ट्रेशन लेता है, उदाहरण पूछता है, एक्सपर्ट उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि कैसे टीचिंग स्किल्स को प्रैक्टिस किया जाएगा और कैसे उसके कंपोनेंट्स को एग्जीक्यूट, क्रियान्वित किया जाएगा। जब एक्सपर्ट्स, मेंटर, ट्रेनर ये एग्जीक्यूशन या डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो जो ट्रेनी टीचर्स होते हैं वे उसका विश्लेषण करते हैं, वे जानने की कोशिश करते हैं, वे समझते हैं, वे आत्मसात करते हैं कि एक्सपर्ट्स, मेंटर, मॉनिटर, टीचर, ट्रेनर किस तरीके की क्रियाएं करते हैं जिनके माध्यम से किसी टीचिंग स्किल को एग्जीक्यूट किया जाए, कि टीचिंग स्किल को प्रैक्टिस किया जाए, उसके कंपोनेंट्स को एग्जीक्यूट, क्रियान्वित किया जाए। साथ ही साथ इस फेज में ट्रेनी टीचर अपनी जिज्ञासाओं को भी अपने एक्सपर्ट, मेंटर, मॉनिटर या अपने ट्रेनर या अपने टीचर से, टीचर एजुकेटर से अपनी जिज्ञासाओं को भी पूछता रहता है, अपनी क्वेरीज भी करता रहता है, अपनी सवाल भी पूछता रहता है और अपनी जिज्ञासा को सेशिएट करता है, शांत करता रहता है। तदुपरांत आती है स्किल एक्विजिशन फेज, कौशल प्राप्ति अवस्था। ज्ञान प्राप्ति की अवस्था के उपरांत द्वितीय अवस्था है सूक्ष्म शिक्षण की, कौशल प्राप्ति अवस्था। इस अवस्था में पर्सपेक्टिव टीचर या ट्रेनी टीचर या प्रशिक्षु शिक्षक किसी टीचिंग स्किल पर अपना व्यवहारिक आधिपत्य स्थापित करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करता है, उसका अभ्यास करता है और उसके कंपोनेंट्स को स्वयं एग्जीक्यूट करने का प्रयास करता है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं? इसमें इसके अंतर्गत एक्सपर्ट द्वारा दिए गए डिमॉन्स्ट्रेशन के अनुक्रम में प्रशिक्षु शिक्षक माइक्रो लेसन प्लान का अभ्यास करता है, उसके अभ्यास को उसके उसका एक्सपर्ट या उसका टीचर एजुकेटर उसका ट्रेनर ऑब्जर्व करता है, वह अपना साथ ही साथ उसका पीयर ग्रुप उसको ऑब्जर्व करता है, प्रेक्षित करता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और उसको पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक दिए जाते हैं, आपस में चर्चा की जाती है कि कहां पर और सुधार की आवश्यकता है। जो स्किल एक्विजिशन फेज है, कौशल प्राप्ति की अवस्था है, उसमें जो फीडबैक का कंपोनेंट है, फीडबैक का जो घटक है, जो पृष्ठ पोषण का घटक है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस घटक के माध्यम से ही किसी टीचिंग स्किल पर मास्टरी ट्रेनी टीचर प्राप्त कर सकता है। तदुपरांत तीसरी अवस्था आती है ट्रांसफर फेज, स्थानांतरण अवस्था। स्थानांतरण अवस्था से तात्पर्य यह है कि जब कोर टीचिंग स्किल्स को ट्रेनी टीचर सीख लेते हैं, उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, उस पर आधिपत्य मास्टरी प्राप्त कर लेते हैं, तो अब उसको रियल क्लासरूम सिचुएशन में प्रयोग किया जाता है। इसे ही कहते हैं ट्रांसफर फेज। यहाँ पर ट्रेनी टीचर को अवसर दिए जाते हैं कि वे अपने द्वारा सीखे गए शिक्षण कौशलों, अपने द्वारा जो प्रैक्टिस किए गए शिक्षण कौशल हैं, अभ्यास किए गए शिक्षण कौशल हैं, उनको रियल क्लासरूम सिचुएशन में प्रैक्टिस करें। यहाँ ट्रांसफर फेज पर डिफरेंट टीचिंग स्किल्स, जो तमाम कई अनेक टीचिंग स्किल्स सीखी गई हैं, उनको इंटीग्रेट करने का भी प्रयास किया जाता है ताकि कहीं पर भी गैप उत्पन्न ना हो। हम एक टीचिंग स्किल का प्रयोग दूसरी टीचिंग स्किल के साथ बिना किसी कठिनाई के कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम इंट्रोडक्शन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल, रेनफोर्समेंट स्किल, डेमोंस्ट्रेशन स्किल, इलस्ट्रेशन स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, तमामों स्किल्स की अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब हम रियल क्लासरूम सिचुएशन में होते हैं तो हम ब्लैक बोर्ड स्किल के साथ साथ ही रिइंफोर्समेंट स्किल को भी यूज़ कर लेते हैं, हम क्वेश्चनिंग स्किल के साथ रिइंफोर्समेंट स्किल को भी यूज़ करते हैं, हम लेक्चर स्किल के साथ लेक्चर देने के साथ साथ क्वेश्चनिंग को भी यूज़ करते हैं, इंट्रोडक्शन के साथ हम ब्लैक बोर्ड वर्क भी कर लेते हैं, हम इलस्ट्रेशन के साथ ब्लैक बोर्ड वर्क कर लेते हैं, हम ब्लैक बोर्ड वर्क करते करते क्लास मैनेजमेंट स्किल को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब ट्रेनी टीचर मास्टरी ओवर टीचिंग स्किल्स पा जाते हैं तो उनको इन टीचिंग स्किल्स को इंटीग्रेट करने में, इनको समाकलित करने में किसी प्रकार की कठिनाई पेश नहीं आती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या हैं, क्यों सूक्ष्म शिक्षण का बहुतायत में प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया जाता है। अव्वल तो यह, चूंकि रियल क्लासरूम सिचुएशन होती है जहां पर सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास किया जाता है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो विद्यार्थियों में, जो पर्सपेक्टिव टीचर्स में, प्रशिक्षु शिक्षकों में आत्मविश्वास एवं साहस उत्पन्न करती है। यह माइक्रो टीचिंग स्किल जो है वह पर्सपेक्टिव टीचर्स में, होने वाले अध्यापकों में, ट्रेनी टीचर्स में ये स्किल भी उत्पन्न करती है कि वो तमाम स्किल्स को आइडेंटिफाई कर लें। यह सक्षमता भी उनमें, कॉम्पिटेंसी भी उनमें उत्पन्न हो जाती है कि जब कोई क्लासरूम चल रहा हो, कोई टीचर टीचिंग कर रहा हो, तो वह ऑब्जर्व करके ही बता देंगे कि अब इस टीचिंग स्किल का प्रयोग किया जा रहा है और किसी पर्टिकुलर टीचिंग स्किल के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह सक्षमता भी प्रशिक्षु शिक्षकों में उत्पन्न हो जाती है। अगर वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं तो उसको पुनः प्ले करके, उसको पुनः देख करके पर्सपेक्टिव टीचर स्वयं में ही अपने सुधार ला सकते हैं। सेल्फ फीडबैक भी एक महत्वपूर्ण विशेषता इसमें है अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, और स्वयं वे निर्णय ले सकते हैं कि उनमें कहाँ कमी हो गई थी और कहाँ उनको सुधार करना चाहिए, जहाँ पर वे मास्टरी ओवर टीचिंग स्किल पा सकते हैं। यहाँ माइक्रो टीचिंग में एक सुविधा जो होती है इमीडिएट फीडबैक की, त्वरित प्रश्न पोषण यहाँ पर प्राप्त होता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है और एक बड़ा लाभ है माइक्रो टीचिंग का। त्वरित फीडबैक के द्वारा तत्काल प्रशिक्षु शिक्षक अपने में सुधार लाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। यदि देखा जाए तो समय के दृष्टिकोण से यह इकोनॉमिक है, यह अल्पव्ययी है तकनीकी, और कंपैरेटिवली यदि तुलना की जाए अन्य शिक्षक प्रशिक्षण विधियों से, शिक्षक व्यवहार परिमार्जन विधियों से, तो इसमें कम समय लगता है। यह अत्यंत व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति एक समय में आसानी से टीचिंग स्किल्स पर मास्टरी प्राप्त कर सकता है, और जो उसका पीयर ग्रुप है वो केवल उस व्यक्ति के प्रेक्षण के द्वारा स्वयं में सुधार ला सकता है। एक्सपर्ट के डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से अपने आप में सुधार व्यक्तिगत रूप से लाया जा सकता है। शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण न केवल पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रविधि है शिक्षक व्यवहार परिमार्जन की, अपितु सेवाकालीन प्रशिक्षण में भी शिक्षकों के शिक्षण कौशल को परिमार्जित करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, उनकी टीचिंग स्किल्स को मॉडिफाई करने के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि साबित हुई है। ये माइक्रो टीचिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ लाभ हैं सूक्ष्म शिक्षण के। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी लिमिटेशंस हैं, कौन सी सीमाएं हैं जहां सूक्ष्म शिक्षण औचित्यहीन हो जाता है, औचित्यपूर्ण नहीं रहता है, और इन सीमाओं को हटाकर हम सूक्ष्म शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। इसमें एक बात ये है कि जो वीडियो रिकॉर्डर, वीडियो कैमरा की बात है, ये चूँकि वैसाध्य होता है, हर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो पाना थोड़ा मुश्किल है, परंतु यह लिमिटेशन हटाई जा सकती है। आजकल के ज़माने में सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनका प्रयोग करके इस लिमिटेशन को समाप्त किया जा सकता है। जो डिस्कशन और फीडबैक है, जो लगातार विमर्श और प्रश्न पोषण होता है, वह कभी कभी प्रशिक्षु शिक्षकों को हतोत्साहित भी कर सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वे अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। यह भी एक सीमा है, इसका भी निवारण मनोवैज्ञानिक तरीके से एक्सपर्ट्स, ट्रेनर, टीचर एजुकेटर कर सकते हैं। प्रयास किया जाना चाहिए कि यदि कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं हो रही है, यदि मास्टरी ओवर टीचिंग स्किल नहीं आ पा रहा है, तो उसको कुछ क्षण, विद्यार्थी को कुछ क्षण, टीचर ट्रेनर को कुछ समय दिया जाए ताकि वो आत्मावलोकन कर सके और किस प्रकार से वो सुधार कर सकता है, इसके लिए उसे अन्य विद्यार्थियों का प्रेक्षण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस लिमिटेशन को पर भी काबू पाया जा सकता है। ट्रेनी टीचर्स इस प्रक्रिया में प्लान, रीप्लान, रीटीच, री फीडबैक, इस प्रक्रिया में ट्रेनी टीचर्स बोर हो सकते हैं, उनको लगातार इस प्रक्रिया से उनको अरुचि पैदा हो सकती है, अरुचि पैदा हो सकती है। साथ ही साथ ट्रेनी टीचर्स लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया में होने के कारण अपने आत्मविश्वास को खो सकते हैं। इन सब कमियों को यदि दूर कर दिया जाए तो माइक्रो टीचिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग बिहेवियर को के लिए एक अत्यंत उपयुक्त तकनीकी के रूप में साबित होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।